आज के मुख्य समाचार। स्टुअर्ट आयर्स ने न्यू साउथ वेल्स मंत्रालय से दिया इस्तीफा। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल की होगी एक महत्वपूर्ण समीक्षा। और खेल में ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में अब तक जीते 100 से ज्यादा पदक। अब खबरें विस्तार से। स्टुअर्ट आयर्स ने न्यू साउथ वेल्स मंत्रालय और राज्य के उप लिबरल नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। जॉन बैरिलारो न्यूयॉर्क सिटी जॉब स्कैंडल के एक मसौदा समीक्षा में पाया गया कि उन्होंने मंत्री आचार संहिता का उल्लंघन किया हो सकता है। न्यूयॉर्क स्थित व्यापार भूमिका के लिए भर्ती प्रक्रिया न्यू साउथ वेल्स संसदीय जांच का विषय बन गई है। राज्य के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने बताया कि 2 अगस्त मंगलवार को प्रीमियर और कैबिनेट विभाग से प्राप्त एक ब्रीफिंग के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया।
The issues in the review go directly to the engagement of Minister Ayres with the Department Secretary in respect of the recruitment process. So that raises questions in relation to the Ministerial Code of Conduct. As a result, Minister Ayres has resigned from his positions and DPC, the Department of Premier and Cabinet, will conduct an investigation in relation to those questions.
श्री एयर्स किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं। फेडरल सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल की एक प्रमुख रणनीतिक समीक्षा की घोषणा की है कि जिससे भविष्य में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा बल की स्थिति का पता चल सके। समीक्षा 2012 के बाद से अपनी तरह की पहली होगी और इसका नेतृत्व सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल सर एंगस ह्यूस्टन और पूर्व श्रम रक्षा मंत्री स्टीफन स्मिथ करेंगे। दोनों विशेषज्ञ 35 वर्षों में सेना का सबसे व्यापक पुनर्मूल्यांकन करेंगे। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस ने बताया कि ADF के ढांचे और तैयारियों पर उनकी सिफारिशें अगले साल मार्च में दी जाएंगी।
It will look at questions of force structure, it will look at questions of capability, it will ask and answer foundational questions about, given our strategic circumstances, what is it that we want our defence force to do on behalf of our nation in this moment. This will be the most significant review that we have seen of our defence force in decades.
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने स्वीकार किया है कि वॉइस टू पार्लियामेंट और उलुरू स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट पर स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बीच मतभेद है। लेबर सरकार उलुरू स्टेटमेंट को दिल से पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये राष्ट्रीय चर्चा आसान नहीं है लेकिन विवेकपूर्ण है।
The Uluru Statement from the Heart didn't appear in a vacuum. It occurred after years of the most extensive consultation with First Nations people around the country. But most importantly, I know it has overwhelmingly the support of Indigenous Australians. Do I expect every Australian on the roll to vote yes? No, I don't. And that's important that people are able to express their views. But overwhelmingly, this is a sensible proposition.
फेडरल सांसद के निचले सदन में एक विधेयक पारित होने के बाद टेरिटरीज के अधिकारों को बहाल करने का प्रस्ताव एक कदम करीब है। लेबर सांसद लूक गॉसलिंग और अलीशिया पेइन ने बिल पेश किया जिसका उद्देश्य नॉर्दर्न टेरिटरी और ACT सरकारों को स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मृत्यु पर कानून बनाने की अनुमति देना है।
It is well past time that Territorians, whether they be in the Northern Territory or the ACT, were treated as second-class citizens. And that will mean for Territorians that we will regain the ability to make laws on issues that affect us as Territorians.
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और विपक्ष के नेता पीटर डटन ने इस मामले पर सांसदों को वोट की अनुमति दी और ये 99 वोटों के साथ और 37 के खिलाफ पारित हुआ। न्यू साउथ वेल्स पुलिस जनता से अपील कर रही है कि वे 4 दशक पहले तुर्की के एक राजनयिक और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले को सुलझाने में मदद करें। 1980 के मामले में फिर से जांच के हिस्से के रूप में काउंटर टेररिज्म एंड स्पेशल टैक्टिक्स कमांड ने जिम्मेदारी के दावे की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है, इस उम्मीद में कि कोई महिला की आवाज को पहचान सकता है। रिकॉर्डिंग में एक महिला आवाज जस्टिस कमांडोज ऑफ द आर्मेनियन जेनोसाइड की ओर से हत्याओं की जिम्मेदारी ले रही है।
The attacks are in the retaliation for the injustice done to the Armenians by Turkey in 1915. We are the authors of the above-mentioned act.
Right.
We have no connection at all with the so-called Armenian Secret Army. And Turkish institutions are our target, the Armenian genocide.
तुर्की के महावाणिज्य दूत सारिक अरियाक और उनके अंगरक्षक एंजिन सेवर को बुधवार 17 दिसंबर 1980 के सुबह 9:45 बजे पोर्टलैंड स्ट्रीट डोवर हाइट्स में एक आवास के बाहर गोली मार दी गई थी। इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तारी और सजा की ओर ले जाने वाली जानकारी अगर कोई व्यक्ति देता है तो जानकारी देने वाले को $1 मिलियन तक का भुगतान किया जा सकता है। काउंटर टेररिज्म एंड स्पेशल टैक्टिक्स कमांडर असिस्टेंट कमिश्नर मार्क वॉल्टन समुदाय से रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनने का आग्रह करते हैं। जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से क्राइम स्टॉपर्स के नंबर 1800-333-000 से संपर्क करने का आग्रह किया जाता है और जानकारी को सख्त विश्वास में लिया जाता है। जनता को याद दिलाया जा रहा है कि वे NSW पुलिस के सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से अपराध की रिपोर्ट न करें। 2016 में देश से भागने के बाद ऑस्ट्रेलिया में कॉमनचीरो बॉस मार्क बडल को गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस ने बताया कि 37 वर्षीय को तुर्की से निर्वासन के बाद बुधवार को डार्विन में गिरफ्तार किया गया था। उस पर पिछले साल मई में मेलबर्न में 160 किलोग्राम से अधिक कोकेन आयात करने का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि वह पहली बार विदेशों में संगठित अपराध के आंकड़ों को निशाना बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई रेडक्रॉस द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों से पता चलता है कि ब्रिटेन के मैड काउ रक्तदाता प्रतिबंध को हटाने के बाद से 20,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने रक्त और प्लाज्मा दाता बनने के लिए साइन अप किया है। पिछले सप्ताह के सोमवार से अब तक 20,711 लोगों को उनके पहले रक्तदान के लिए बुक किया गया है। नियम में बदलाव का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो 1980 और 1996 के बीच 6 महीने या उससे अधिक समय तक ब्रिटेन में रहा या यात्रा की, वो अब ऑस्ट्रेलिया में रक्त और प्लाज्मा दान कर सकता है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान दौरे के बाद विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच शांति और तनाव कम करने के लिए आह्वान किया है। पेलोसी देश का दौरा करने वाली 25 वर्षों में सर्वोच्च रैंकिंग वाली अमेरिकी अधिकारी बन गई है। चीन ने सुश्री पेलोसी की यात्रा की निंदा करते हुए कहा है कि यह ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी कहते हैं कि बाइडेन प्रशासन संघर्ष से बचना चाहता है।
with long-standing U.S. policy into some sort of crisis, or use it as a pretext to increase aggressiveness and military activity in or around the Taiwan Strait, now or beyond her travel. We will not engage in saber-rattling. We will continue to operate in the seas and the skies of the Western Pacific as we have done for decades. We will continue to support Taiwan.
रूसी प्रतिनिधिमंडल के एक प्रतिनिधि ने पश्चिमी देशों को रूस के संकल्प की परीक्षा न लेने की चेतावनी दी है। यूनाइटेड नेशंस में परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के लिए सम्मेलन में बोलते हुए अलेक्जेंडर त्रोफिमोव कहते हैं कि अगर पश्चिमी देश रूस का परीक्षण करने की कोशिश करते हैं तो वो भी पीछे नहीं हटेगा।
But if Western countries try to test our resolve, Russia will not back down. This is not the language of threat. This is simply a statement of what is possible. Such is the logic of deterrence. The grounds for this decision were the confrontational actions and provocative statements by representatives of Western nuclear powers regarding the possibility of NATO interference in military actions in Ukraine against Russia. Thank you.
अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 69 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.46 रुपये हो गई है। अब खबरें खेल जगत से। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने 100 से अधिक पदक हासिल किए हैं। पांचवें दिन में ऑस्ट्रेलिया ने 11 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 12 कांस्य का दावा किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पास अब कुल मिलाकर 106 पदक है। मुख्य आकर्षण में से एक ऑस्ट्रेलिया की वेट लिफ्टर एलेन चिकामताना थी, जो दो अलग अलग देशों के लिए कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में भी बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में भी बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में तेज बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। सिडनी में बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। ब्रिस्बेन में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में भी आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।